नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खिचड़ी मुद्दा पर। तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था क्रिया योग के बारे में, बेसिक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे गुरु प्रणाम, जो हर किसी भी क्रिया योग की विधान से पहले गुरु प्रणाम या प्रथम क्रिया जिसको कहते हैं, उस क्रिया को करने के पश्चात खिचड़ी मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। पहले बात करते हैं गुरु प्रणाम प्रणाली के ऊपर। प्राणायाम के द्वारा साधक को चाहिए कि पूरक, कुंभक और रेचक बैठे बैठे करे, पर उससे पहले ही व्यक्ति को चाहिए कि वह बैठे बैठे या फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने गुरु को प्रणाम मन ही मन करे या शारीरिक से साष्टांग प्रणाम करे, और साथ ही साथ मंत्रोच्चार भी करता रहे। और मंत्रोच्चार करने के बाद पूर्व अवस्था में आकर पूरक कुंभक और रेचक आदि प्राणायाम करें। जो मंत्र है गुरु को प्रणाम करने के लिए वह अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार अपने सिद्धस्थ गुरु को, जो आत्मा साक्षात्कारी पुरुष है, उन गुरु को नमस्कार करते हुए जिनसे आपने दीक्षा लियो, जो आत्मा साक्षात्कारी पुरुष हो, उन्हीं को मैं गुरु मानता हूँ। अगर आपके आध्यात्मिक गुरु ना हो तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान सकते हो, क्योंकि वह आदि गुरु हैं, वही आदि और प्रथम योगी हैं संसार के। तो फिर गुरु को प्रणाम करने के पश्चात आसन पर बैठ जाएं। आसन कोई भी हो सकता है, पद्मासन, सिद्धासन या स्वास्तिक आसन, जिसमें आप सुविधाजनक बैठ सको, उसको सुखासन कहते हैं। तो सुखासन पर बैठ कर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बैठने के समय यह आपको ख्याल रहे कि आपका मेरु स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल सीधा हो। इस पर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समकायो शिवो कृवाह, अर्थात ये आपके जो गर्दन है, नेक रीजन है, और आपकी पीठ जो है, स्पाइन है, वो एक शेप में हो, 90 डिग्री में। झुककर आप कभी ना बैठे, क्योंकि झुककर बैठने से प्राणों का जो प्रवाह अंतर में चलता है, क्योंकि जब भी आप साधना करते हो तो एक प्राणों का प्रवाह बनता है, और उस प्राणों का प्रवाह गतिशील होने के लिए एक सीट में बैठने की क्रिया बताई गई है। तो एक सीट में ही बैठे, और गुरु को प्रणाम करने के बाद अपना मूल कार्य या प्राणायाम या जो क्रिया आपको बताई गई है अपने गुरु से, वो आप आरंभ कर सकते हैं। और सभी क्रियाओं के करने के पश्चात पुनः आसन से उठने से पहले गुरु प्रणाली या गुरु प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो ये मैंने बात कही गुरु प्रणाम के ऊपर। अब हम बात करेंगे अपना मूल उद्देश्य जो है खिचड़ी मुद्रा। अपने मंतव्य व्यक्त करूँगा तो खिचड़ी मुद्रा हमारी इंद्रियों में, यानी सेंसेस में, सबसे जो चंचल इंद्रिया होती है वो है रसेंद्रिया, टंग। अतः इसे संयमित करना सर्वप्रथम बहुत ही आवश्यक है। इसमें जीवा की जड़ता को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय महान क्रिया योगी प्रभु श्री लारी महाशय बताते थे। उन उपायों में जीवा के नीचे की जो पतली परत होती है, जो नस जैसी रहती है, उसे जब उसे जो जोड़ती है उसे समाप्त किया जाता था। उपनिषदकारों ने इसे छेदन क्रिया कहता है, जो कि काफ़ी कष्टकारक पद्धतियां बताई गई हैं, परंतु लारी महाशय ने की सरलीकरण कर दिया है उस पद्धति को। अब जब इस जीवा की जड़ता को आप समाप्त करते हो, अपने गुरु से ज्ञान लें कैसे जड़ता को समाप्त करना है, तब उस जीवा को मोड़ करके तालू के ऊपर भीतर ही भीतर आपको चिपका देनी है। और इसी क्रिया की कोई संख्या निश्चित नहीं है कि कितनी बार इस क्रिया को करना है। फिर भी कम से कम योगीजन कहते हैं कि 100 बार 100 बार, यानी कि 100 बार जरूर करना चाहिए। जितना अधिक आप यह क्रिया कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। जब आपकी जीभ, जिसको जीवा भी कहते, भीतर प्रवेश कर जाती है, तब यह क्रिया करने पर छोड़ भी दिया जाता है। और इस क्रिया के कई लाभ हैं, जैसे कि जब जीवा तालू के मूल में आप प्रवेश करने पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आपको प्रथम ये फायदा होता है कि वाक संयम, अर्थात जीव को अंदर लेने से आप बोल नहीं पाएंगे, अर्थात बेकार की जो वार्तालाप से बच जाएंगे, निंदा नहीं कर सकेंगे, और अधिक बोलने का जो शक्ति का क्षय होता है वो भी नहीं होगा। दूसरा, मन की चंचलताओं पर विजय प्राप्त होता है। तीसरा, काम वासना का ह्रास होता है। जी हाँ, जीव को और काम संबंध माना गया है, और इसीलिए महाकाल की चित्र में मूर्ति में आपके महाकाल की लंबी जीभ हमें यही बताती है कि माँ काली रक्त वीर्य असुरों का वध कर अपनी लंबी जिह्वा पर अधिकार किया है। पर ये केवल रूप मात्र है, एक सिंबॉल है। वास्तव में वहां पर यह दर्शाया गया है कि अपनी रसेंद्रियों को लंबी करके उसको तालु के अंदर स्थित करने से काम वासना रूपी रक्त वीर्य नामक जो असुर है उसका नाश होता है। पर यह सोचने वाली बात है कि जगत जननी जो माता है काली, वो सभी की यानी सभी का मतलब है जितने भी देवी देवता असुर मानव पशु पशु कीट पतंग जितने भी जड़ और जीवित पदार्थ है उन सबकी वह माता है और हम सभी उसके पुत्र हैं। तो इसलिए माता पुत्र का वध कैसे कर सकती है? जब साधारण माता एक पुत्र वध नहीं कर सकती तो सारे संसार की माता महाकाली महाकाली मानी गई है। अतः यही निर्देश ऋषियों ने भी किया कि खींचरी मुद्रा करने से काम वासना के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो उसका बेनिफिट है वो है सोम रस का पान। जब आप जीवा को तालु के प्रदेश में प्रवेश करते हो तब सहस्रधार ग्रंथि है, सहस्रधार चक्र भी कहा जाता है, वहां से एक सोम रस का स्राव होता है जिसे अमृत या चरणोदक भी कहा जाता है। कुछ लोग उसे गुरु चरणोदक भी कहते हैं। इसका स्वाद वहां से एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से स्राव का प्रदर्शन होता है। अधिकांश योगी यह स्वाद मधु जैसा, जो मधु यानी हनी जैसा बताते हैं। कभी कभी यह द्रुत यानी कि घी जैसा स्वाद भी यह माना जाता है। और उसका रस पान करने से एक विचित्र नशा योगी को चढ़ता है। इससे मन शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। और यह नशा शराब की नशे से काफी हजार गुनी ज्यादा है और इसी में योगी मस्त हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाता है। शराब के नशे से तो बुद्धि विकृत हो जाती है, परंतु खिचड़ी मुद्रा के इस नशे से मन की और बुद्धि की स्थिरता प्राप्त होती है और एक अंतर जागृति होती है। खिचड़ी मुद्रा का महत्व शास्त्र में कई साधकों ने बढ़ चढ़ कर बताया और है भी। महानतम योगी श्री गुरु गोरखनाथ महाराज कहते हैं, न खेचरी समा मुद्राम, अर्थात योग की समस्त मुद्राओं में खेचरी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। और इस खेचरी मुद्रा की अनेक व्याख्याएं आपको शास्त्रों में मिलेगी। जैसे तंत्र शास्त्र, तंत्र का जो शास्त्र है उसमें पाद मुद्रा बताई गई है, मार्स मुद्रा, मत्स्य मैथुन आदि चार पद क्रिया बताई गई। उसमें से मार्स भक्षण भी एक क्रिया है। चूंकि जीव पूरी तरह से मांस की बनी हुई है इसीलिए उसके भीतर यानी जीवा तालु के भीतर उसको प्रवेश करने से उसको मांस भक्षण की तुलना में बताया गया है। यही बात श्री महात्मा कबीर ने भी एक बार अपने शिष्य को खिचड़ी मुद्रा समझाते हुए कहा था, यानी उन्होंने पहली में कहा था, पहली भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना हांडी भर के। अर्थात यहाँ श्री कबीर जी यहाँ यही कहते हैं, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, पर आज मेरा उपवास है इसीलिए इस भिक्षा से ही मैं उपवास तोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि ऐसी भिक्षा लाना जिसमें जीवित और मृत मुर्दे ना हो, किसी की मृत्यु ना हो, और वैसा मांस मुझे खाना है। अब आपको लगेगा कि जीव जंतु को मारे बिना मांस कहाँ से मिलेगा, जिंदा या मृत व्यक्ति को मारे बिना कैसे मांस लाया जा सकता है, और हांडी भरकर मांस लाने का क्या मतलब है। शिष्य की समझ को गुरु की खेचरी मुद्रा ने जीव का मांस को स्वयं भक्षण करने का संकेत समझाया था, जो वह शिष्य कबीर का नहीं समझ पाया। तब घुमा घुमा कर खाली हाथ आया, तब श्री महात्मा जी अर्थात कबीर जी ने खेचरी मुद्रा का पूर्ण विवरण उनको दिया। यही खेचरी मुद्रा का विवरण हमें शिव गोरख संहिता में भी मिलता है। माँ सप्ते रसनाम प्रिया तत्त अंशम रसना प्रिय है, यशो भक्ष ये देवी समन्वत मास मास साधक। मास का मतलब है रस और अंश का मतलब है मास, माँ मतलब के रस और उसका अंश जो होता है उसको रस बोलते हैं। तो मांस की जो रस होती है उसका जब हम भक्षण करते हैं उसको ही मांस भक्षण कहते हैं। और इसी को योग प्रक्रिया में खेचरी मुद्रा ना जानकर कहीं तांत्रिक और मांत्रिक लोग बाहर के जानवर या बकरियों को मार कर मांस खाने या मांस भक्षण समझते हैं। तंत्र में इसी पंचमकार को यानी कि मांस को पंचमकार बताया है। इसमें मांस भक्षण और मदिरा पान ये दोनों खेचरी मुद्रा से ही आपकी पूर्ण हो जाती है। अब जब जीवा का भक्षण मांस भक्षण हुआ तो सोम रस यानी कि ऊपर का जो सहस्त्र दल से जो स्राव होता है अमृत का उसको सोम रस कहते हैं। सोम रस का पान उसी को हम मदिरा पान कहते हैं और यही शुद्धि तंत्र है या इसका शुद्धिकरण का एक स्वरूप है। परंतु आजकल के तांत्रिक बिना किसी ज्ञान के ही मांस और मैथुन के पीछे लग जाते हैं और मत्स्य मांस मैथुन मांस भक्षण इसको प्राधान्य वस्तु मानकर विकृत स्वरूप बना लेते हैं। आगे जब बात करता हूँ मत्स्य और मैथुन की, मत्स्य यानी कि मछली को मत्स्य कहते हैं, मत्स्य और मैथुन यह प्राणायाम के द्वारा भी इसकी क्रिया को सिद्ध किया जा सकता है और प्राणायाम के द्वारा ही होता है और इसे प्राणायाम के वर्णन में कई जगह लिखा जा चुका है। आगे समय मिलेगा तो इस पर भी मैं एक अपनी व्याख्या दूंगा। योग मुद्राओं में तो बहुत सारी योग मुद्राएं हैं पर इन सबको अज्ञानतावश समझ न पाने के कारण कई इतिहासकारी और झूठे तांत्रिक मान्यताओं ने मांस मदिरा मत्स्य आदि को प्रधानता मान लिया था। शास्त्रों में एक उपनिषद आता है सांडिल्य उपनिषद, इसमें महर्षि अथर्वा सांडिल्य ऋषि को कहते हैं, हे वशिष्ठ हे श्रेष्ठ सांडिल्य तू खेचरी मुद्रा को भज। अब इसका मतलब है कि आपको खेचरी मुद्रा का महत्व पता चल जाएगा, खेचरी मुद्रा सारी मुद्राओं में श्रेष्ठतम क्यों कही जाती है और इसीलिए योग शास्त्र में योग वशिष्ठ में भी खेचरी मुद्रा का कई ज़्यादा महत्व बताया गया है। आगे श्री लाहरी महाशय में अपनी क्रिया योग की लेसन में खेचरी मुद्रा को प्रथम स्थान दिया था। बालक जो माता के गर्भ में होता है, बालक जब माता के गर्भ में रहता है तो इसी योग के बालक जब गर्भ में रहता है तो योग मुद्रा में स्वतः उसकी जीवा तालु को लगी रहती है और जब बालक पैदा होता है तो नस या जब उसको उसकी नस काटती है माँ के नाभि से उसके नाभि से उसके साथ ही उसके मुंह में अंगुली डालकर उसकी जीवा को भी खींच के बाहर निकालती है। अर्थात यह ईश्वर प्रदत्त योग है जो एक गर्भ में बसे हुए प्राणी एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार में प्रवेश नहीं किया वो स्वतः खेचरी मुद्रा करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति गर्भ में जब होता है वो योगी ही रहता है। जन्म के बाद प्राय 6 मंथ तक बच्चे की जो जीवा होती है वो तालु से हमेशा कटी हुई रहती है पर आगे चलकर संसारिकता में लीन होने के कारण उसमें जड़ता आ जाती है और बाद में वो इस क्रिया को भूल जाता है। तो आज मैंने खेचरी मुद्रा पर बहुत ही सिंपल तरीके से अपने विचार स्पष्ट किए हैं। आशा रखता हूँ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।